ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अब मंगलाचरण गा सकते साथ में पेज नंबर एक में है जिनको याद नहीं है वो ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे भगवद गीता का जो सत्र है। तो जैसे कल हमने चर्चा की थी किस प्रकार से अर्जुन अपनी पहली स्टेप उठाता है और कृष्ण को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करता है। तो आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से ही भगवत ज्ञान को समझा जा सकता है, हाँ या भगवान को समझा जा सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु वो पारदर्शी पटल है जिनके द्वारा हम कृष्ण को सरलता से देख सकते हैं। जैसे भगवान जो गीता का संदेश देते हैं, कल हमने चर्चा भी की थी कि भगवान ने तो संस्कृत में दिया तो, लेकिन हमें कोई नीड नहीं है संस्कृत समझने की। संस्कृत ऐसी भाषा है कि एक शब्द के अनेकों अर्थ हो सकते हैं और उससे व्यक्ति भ्रमित भी होता है यदि भगवान के भक्त की सहायता से वो भगवत संदेश को नहीं समझता। जैसे हिंदी में कहते ना, हिंदी के शब्दों में भी हम भ्रमित हो जाते यदि उचित उनका इस्तेमाल नहीं करते। रोको मत जाने दो, और क्या है, रोको मत जाने दो। इतने सिंपल से सेंटेंस में भी इतनी बड़ी दिक्कत है। तो जहां संस्कृत का एक एक शब्द प्रभुपाद कहते हैं वो स्टोर हाउस है नॉलेज का, एक शब्द में इतनी गहराई है कि जिसका एक शब्द को एक्सप्लेन करने में हजारों दिन बीत सकते हैं। और संस्कृत को सीखना है तो व्यक्ति को 12 साल लगते हैं ठीक से संस्कृत आने के लिए, उसका ग्रामर आदि सीखे। तो कलियुगा में कोई नीड नहीं है, इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं उनके माध्यम से समझा जा सकता है। और भगवान ने जो शब्द बोले हैं, भगवान का उन शब्दों के पीछे बोलने का जो भाव है, उन भावों को कौन पकड़ता है, उनके भक्त पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं साधवो हृदयो मह्यम, भगवान कहते हैं मेरे जो भक्त है वो मेरे हृदय में वास करते हैं। इसी कारण से भक्तों को भगवान के हृदय की बात पता रहती है। और भगवान भी कहते हैं कि साधुनाम हृदयम, तो हम भगवान कहते कि साधु के हृदय में भी मैं निवास करता हूँ। तो भगवान के हृदय को पूर्ण रूप से जानने का एक ही योग्यता साधु के पास है। और भगवान भी अपने भक्त के हृदय को जानते हैं। इसी कारण से कहते हैं कि दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक है पुस्तक भागवत, है ना, बुक भागवत, और दूसरा होता है भक्त भागवत। तो जो ग्रंथ भागवत को समझना है तो आपको क्या करना होगा, भक्त भागवत की हेल्प लेनी होगी। डिवोटी, दो डिवोटीज है, एक है बुक भागवत और दूसरा है एक पर्सन भागवत। तो यदि ग्रंथ भागवत या पुस्तक भागवत को समझना है तो जो पर्सन भागवत है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास क्या है, की है, चावी है उस ग्रंथ को खोलने की। इसलिए कहा जाता है कि जो डिवोटीज होते हैं, भक्त होते हैं, वो ओपनर का काम करते हैं। अब पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स पीते कि नहीं, अभी पता नहीं, अभी तो प्लास्टिक में आ गए, शुरुआत के दिनों में कैसे थे, ओपनर के बिना आप नहीं खोल सकते। तो ओपनर का काम कौन करता है, भक्त करता है। शास्त्रों को या ग्रंथों का जो ओपनर का काम भगवान के भक्त करते हैं, इसी कारण से प्रभुपाद जैसे भक्त भगवत गीता देते हैं। तो अभी आप नेट में भी देखते हैं कि टॉप 10 सेलिंग भगवत गीता कोई है तो सबसे पहले ऊपर किसका नाम है, तो कौन सी भगवत गीता का है, प्रभुपाद का, ये जो यथारूप भगवत गीता एज इट इज। तो भगवत गीता तो भक्तों के माध्यम से ही समझी जा सकती है, गुरु के माध्यम से ही जानी जा सकती है, जिसके लिए अर्जुन अपने आचरण से सिखाते हैं। वो असाधारण व्यक्तित्व है, लेकिन भगवान के चरणों में एक शिष्य के रूप में निवास करते या बैठ जाते और सीरियसली शुरू करते हैं सीखना। तो आध्यात्मिक जीवन ये सीरियस बिजनेस है। क्या है, सीरियस बिजनेस है, गंभीर बिजनेस है, क्योंकि लाइफ की जो सर्वोच्च अचीवमेंट है उसको हम प्राप्त करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो जब अर्जुन ने सीरियसनेस दिखाया तो फिर कृष्ण ने क्या किया, सीरियस ले लिया। ऐसे होते ना, कुछ लोग आपको तभी सीरियस लेते हैं जब आप क्या दिखाते हो कि वो आप सीरियस हो। हाँ, जो सीरियस नहीं है हम उनको सीरियसली लेते नहीं। अपने जीवन में भी देखते हैं, घर में चार बच्चे हैं, एक बच्चा बड़ा सीरियस सिंसियर है, माता पिता बड़ा अटेंशन देते हैं, उसको गंभीरता से ले लेते हैं, बाकी इधर उधर घूमने वाले, बात न मानने वाले, अनसीरियस जो बच्चे हैं उनको इतना केयर नहीं करते। तो वैसे ही अर्जुन ने जब सीरियसनेस दिखाया, और पहले तो अर्जुन बड़ा अपने आप को पंडित समझ रहा था, उनको लगा ये तो ड्राइविंग कर रहे कृष्ण, मैं तो ज्यादा नॉलेज ज्ञानवान हूँ। हमें कभी कभी होते ना, आपने छोटे से थोड़ा बहुत हमें आता नहीं एबीसी, तो हम बड़ी बड़ी बातें करने लगते। अर्जुन भी ऐसे दिखा रहा था, अर्जुन कह रहा था, जैसे हम कई बार ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रेन में कई लोग मिलते हैं, बैठते ना आप तो वहाँ कई सारे फैमिलीज, तो जैसे ऐसे कपड़े देखते हैं तो भगवान की चर्चा करना शुरू करते हैं, और जो भी उनके पास नॉलेज है उनको लगता है कि उनको सब कुछ पता है। तो हम चुप बैठते कि हाँ ठीक है, हमें कुछ नहीं पता। तो वैसे ही कृष्ण चुप बैठे थे, अर्जुन बोलते जा रहा था चुप हो गया, और फिर उन्होंने शरण ग्रहण की और सीरियस। अभी पहले तो बड़ी मित्रतापूर्ण बातें हो रही थी, लेकिन अभी संबंध चेंज हो गया। पहले कैसे संबंध था, फ्रेंडशिप का था, अभी क्या संबंध बना, गुरु और शिष्य। तो दोनों ये जो संबंध है ये बड़ा सीरियस और महत्वपूर्ण था। तो जब ये चीज हुई तो सबसे पहले कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, हाँ, तो अर्जुन को क्या करते हैं, डांटते हैं, और दूसरी चीज अर्जुन में गलती ढूंढते हैं। प्रभुपाद को पूछा कि गुरु कौन है, प्रभुपाद ने कहा जो शिष्य में गलती देखे वो कौन है, गुरु है। माँ पहले गुरु होती कि नहीं, हमारी बचपन में माँ हमेशा बच्चे की गलतियां देखती है, उसको ठीक करती है। तो वैसे ही गुरु का मतलब यह है कि वो गलतियां ढूंढे उस शिष्य में जिसको हेल्प करें आगे बढ़ने के लिए भगवान की ओर। तो उसी प्रकार से और डांट भी लगाए, तो गुरु को डांटने का अधिकार है, गलतियां ढूंढने का अधिकार है, तभी शिष्य क्या हो सकता है, उन्नत हो सकता है, सुधर सकता है। हाँ, जैसे कुमार होता है ना, मटका बनाता है तो थोड़ा थोड़ा ऐसे थप थपाता है, हमें लगेगा अरे क्या कर रहे हैं, गीला गीला अभी मिट्टी है, लेकिन वो आकार देता है, फिर फाइनली ऐसा सुंदर शेप हमारे हाथ में आता है। तो वैसे ही गुरु का बिजनेस, थोड़ा सा थप थपाता है, पिटाई भी करता है, सुंदर सा शिष्य बन जाता है, फिर वो भगवान के चरणों में अर्पित करता है। तो उस प्रकार से गुरु का ये बिजनेस है। और आजकल तो गुरुगण तो शिष्यों को डांटते भी नहीं, ना गलतियां ढूंढते हैं। शिष्य ऐसे है कि गुरु में क्या देखते हैं, गलतियां देखते हैं। और गुरु लोग भी शिष्यों को कुछ डांटना वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, गलतियां भी नहीं ढूंढते, क्योंकि उनको लगता है डांटूंगा, गलतियां ढूंढूंगा तो ये मुझसे मेरे फॉलोवर्स की संख्या कम हो जाएगी। सारी चिंता किस चीज की लगी होती है व्यक्ति को? अनुयायी, फॉलोवर्स, जिसके कारण इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे हजारों हजारों फॉलोवर्स नहीं चाहिए मुझे। तो वो कहा करते थे, एक चंद्र तमो हंति नच तारा सहस्रशा, मुझे चांद के समान भक्त चाहिए। एक चांद मिले जो सारे अंधकार को दूर कर सकता है, हजारों हजारों तारों की आवश्यकता नहीं है। एक बार प्रभुपाद कॉनवे हॉल अमेरिका में या लंदन में पता नहीं प्रवचन दे रहे थे, उनके शिष्यों ने अरेंज किया था एक हॉल में बड़ा सा प्रवचन संध्या के समय में। तो प्रभुपाद प्रवचन देने आए, देखा इतना बड़ा ऑडिटोरियम है जिसमें बहुत कम लोग बैठे थे, बस ना के बराबर लोग बैठे थे। तो शिष्यों को लगा प्रभुपाद को इतना बड़ा हमने अरेंज किया और कोई आया ही नहीं प्रोग्राम में। तो प्रभुपाद ने कहा कि हम लोग हीरे और, जैसे उन्होंने कहा हीरे और मोती बेचने होते हैं तो उसके लिए ग्राहक बड़े कम मिलते हैं, खरीदने के लिए क्या चाहिए, पॉकेट में पैसे चाहिए। तो हाँ, हम ये जो नॉलेज दे रहे हैं कृष्ण भावना का, ये अति उत्तम है, उसके लिए लोग क्वालिफाइड नहीं है, इसके लिए कम लोग हैं। तो लेकिन प्रभुपाद कहते कि मुझे हजारों अनुयायियों की आवश्यकता नहीं, चंद्रमा एक हो इनफ है। हजारों तारे मिलके जो काम नहीं कर सकते वो क्या करता है, एक चंद्रमा। तो कुछ होते हैं बड़े बड़े गुरु जाने माने, वो केवल फॉलोअर्स बनाने में लगे रहते हैं। और फॉलोअर्स ऐसे कि कोई नियम कानून नहीं है उनके ऊपर, जो मर्जी आपको अच्छा लगे वो करते रहो, कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। सब प्रकार के व्याभिचार पाप कर्म करते रहो और अपना आध्यात्मिक जीवन क्या करो, कंटिन्यू करो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि हमें ऐसे अनुयायियों की भी आवश्यकता नहीं है जो आध्यात्मिक जीवन में गंभीर नहीं है। तो प्रभुपाद अमेरिका गए तो उन्होंने वहां ये नहीं सिखाया कि आप अच्छा है, आप लोग मांस खाते हो तो अच्छा है, खाते रहिए, और छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पाप कर्म करते रहिए। प्रभुपाद ने लेकिन गंभीर शिक्षा दी, उनके दोष दिखाए और उनको सुधारा। तो भगवान ने भी अर्जुन की कोई चापलूसी नहीं की कि ये मेरा शिष्य बने रहे, इतना बड़ा राजा है, ये शिष्य गायब हो जाएगा तो मेरा कैसे होगा। तो उन्होंने कोई चापलूसी नहीं की, उनको प्रेज नहीं किया, बल्कि जैसे ये रोल स्वीकारा कृष्ण ने तो उन्होंने सबसे पहले उनको डांटा। भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है उसका 11वां श्लोक निकालिए, पेज नंबर 61। ये ओपनिंग स्टेटमेंट, हर एक शास्त्र का एक ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है, और कुछ असाधारण स्टेटमेंट्स होते हैं, और कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो बारंबार उसमें रिपीट होते हैं शास्त्रों में। तो ये सब चीजें शास्त्रों को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलती है। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचत स्वं प्रज्ञावादां च भाससे गतासुन च नानुशोचन्ति पंडितः। तो भगवान यहाँ पंडित की व्याख्या कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। देखिए पहले से ही डांटा भगवान, डांट क्या रहे हैं कि भगवान ने कहा पंडित लोग शोक नहीं करते हैं, जीवित व्यक्ति के लिए और मरे हुए व्यक्ति के लिए भी नहीं, क्योंकि वो वास्तविकता जानते हैं वो व्यक्ति कौन है। हम पूरा जीवन बिताते हैं लेकिन हम अपने आप को देख नहीं पाते, अपने आप को अनुभव नहीं कर पाते, अपने आप को समझ नहीं पाते। तो भगवान यहाँ उनको डांटते हुए कहते हैं कि अर्जुन, इससे पहले तो तुम बड़ी पंडित की जैसे बातें कर रहे थे, शास्त्रों से बोल रहे थे, कह रहे थे कि मैंने तो परंपरा से सुना है, लेकिन तुम्हारे वक्तव्य से तो मुझे लगता है कि तुम मूर्ख नंबर वन हो। क्या बोला इस श्लोक में भगवान ने, मूर्ख नंबर एक के हो। तो भगवान एक प्रकार से उनको डांटते हैं और कहते तुम पंडित नहीं हो, हाँ तुम एक नंबर के बुद्धू हो। तो इस प्रकार से भगवान उनमें ये गलती ढूंढते हैं। और क्यों ये कहते हैं, क्योंकि अर्जुन वास्तव में नहीं जानता था एक प्रकार से कि जो जीव है वो शरीर से अलग है, इस बात का ज्ञान नहीं था। जो मूर्ख व्यक्ति है उस वही व्यक्ति शरीर के लिए शोक करता है। अर्जुन का शोक क्या था, इतने सारे लोग मारे जाएंगे मेरे कारण, हाँ कैसे मैं उनके बिना एक प्रकार से जीवित रहूं, हाँ इतने लोगों का संहार होगा। लेकिन वास्तव में अर्जुन लोगों को केवल शरीर समझ रहा था। जैसे कल हमने कहा सबसे बड़ा अज्ञान क्या है, अपने आप को शरीर समझना। जैसे अष्टावक्र मुनि थे, वो जब एक सभा में आए तो वहां बहुत सारे पंडित बैठे हुए थे, और अष्टावक्र मुनि ये फेमस मुनि है पुराणों में। तो ये अष्टावक्र मतलब जो आठ भागों में क्या है, टेढ़े हैं, वक्र हैं। तो ऐसे जैसे उन्होंने सभा में प्रवेश किया, बहुत विद्वान थे वो, और जैसे सभा में प्रवेश किया तो वो ऐसे टेढ़े मेढ़े चल रहे थे, उनका शरीर आठ भागों में टेढ़ा था। तो वहां जितने पंडित बैठे थे विद्वान, वो हंसने लगे। तो अष्टावक्र मुनि कहते ये तो पंडितों की सभा नहीं है, ये सब चमार की सभा है। क्योंकि चमार किससे हमेशा काम करता है, चमड़ी से। तो पंडित ये लोग सारे विद्वान होकर भी मुझे देखकर हंस रहे हैं, ये मेरे किस चीज को देख रहे हैं, शरीर को ही देख रहे हैं। और पंडित वास्तव में शरीर से क्या देखता है, परे देखता है। इसलिए भगवान भगवद गीता के पांचवे अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं, पेज नंबर 194, श्लोक नंबर 18 194, भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुने चैव शोपाके च पंडिता समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनित ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। तो समान दृष्टि क्या है कि वो देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान का अंश है या फिर वो इस शरीर से परे जीवात्मा है। तो इस प्रकार से हमारी मूर्खता क्या है, मूर्खता का मतलब जो है नहीं उसको है समझना। सोचो कोई हवलदार आपको मिला, हवलदार कहता है कि मैं कमिश्नर हूँ, क्या सोच रहा है वो, मैं कमिश्नर हूँ। बल्कि हवलदार हवलदारी है, वो ये सोचते रहे मैं कमिश्नर हूँ, तो उसकी मूर्खता है। तो इसी कारण से ये जो पागलपन है जिसको भगवान दूर करना चाहते हैं इसी गीता के दूसरे अध्याय में, और भगवान चाहते हैं हमें याद दिलाना चाहते कि हम वास्तव में कौन है। भगवान का कार्य है कि हमारी जो याददाश्त हमने खो दी है उसको क्या करना, वापस ला देना। सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का यही उद्देश्य है कि हमारी याददाश्त खो दी है हमने कि मैं कौन हूं। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो व्यक्ति याददाश्त खो बैठता है, उसको ये भी पता नहीं रहता कि मैं कौन हूं, मेरे बच्चे पत्नी आदि। तो डॉक्टर बारंबार उसे याद दिलाते हैं, बारंबार फोटोज दिखाते हैं, घटनाएं सुनाते हैं, तो धीरे 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 उसे याद आता है। वैसे ही हमारी स्थिति है, हम स्पिरिचुअल लिविंग बींग है और हम अपनी याददाश्त को खो चुके हैं। इसी कारण से कृष्ण क्या करते हैं, हमें याद दिलाते हैं। बल्कि ऐसा पागलपन है हम में कि हम जीवन भर धन और नेम पद पोजीशन कितनी चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं, और फिर फाइनली क्या होता है, हमें जबरदस्ती घसीट के ले जाया जाता है इस संसार से, और इन चीजों को हमें छोड़ना पड़ता है। ये तो वैसा ही है जैसे कि कोई पिता अपने बच्चों के साथ समंदर के तट पर गया, और वहां बच्चा पिता से अलग होके क्या करता है, वहां बालू का घर बनाता है, मिट्टी का। और जब कुछ समय हो जाता है, पिता कहता है बच्चे चलो अभी घर जाने का समय आ गया है, बच्चा क्या कहता, नहीं मेरा घर वहां मैंने बनाया हुआ है, हाँ वो कैसे छोड़ के जाऊंगा। लेकिन पिताजी क्या करते, जबरदस्ती हाथ पकड़ते घसीट के ले जाते हैं। वैसे हमारे साथ है, हम भी क्या क्या चीजें नहीं बना रहे हैं, क्या क्या सपने नहीं देख रहे हैं। एक ब्रह्मचारी था, और उसने सपना देखा, उसने सोचा कि वो तो भिक्षा मांग के जीवन यापन कर रहा था, उसने एक दिन उसको बहुत सारा आटा मिला भिक्षा में, भिक्षा में घर घर जाके झोली में आटा भर के लाया, आटा ऐसे टांगा ऊपर घर के अंदर और आंखें बंद करके ऐसे लेटा हुआ था, तकिया लेकर पाव के ऊपर पाव ऐसे रख के और सब आंखें बंद करके सोच रहा था अभी इतना आटा आ गया है मेरे दिन अच्छे आने वाले हैं। आटे से सोचा इस आटे को बेचूंगा तो एक मुर्गी खरीदूंगा, बहुत सारी मुर्गियां हो जाएंगी, अंडे बेचूंगा तो बहुत सारी मुर्गियों को सेल करूंगा तो एक बकरी खरीदूंगा, उनको सेल करूंगा तो एक गाय खरीदूंगा, गाय से दूध निकलेगा और बहुत सारी गायें हो जाएंगी, थोड़ा धनवान हो जाऊंगा और कोई भी व्यक्ति मुझे अपनी बेटी ऑफर कर सकता है, कोई भी मेरी शादी हो जाएगी और शादी होकर फिर तो मैं राजा हूँ, मेरे लिए फ्री का भोजन मतलब कुकिंग तो नहीं करना पड़ेगा, भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना होगा, पत्नी सारा मेरे लिए काम करेगी और एक दिन जब पत्नी कहेगी कि ये नहीं करूंगी तो मैं उसको लात मारूंगा, क्या करूंगा, लात, ऐसे आंखें बंद थी उसकी, लात कहाँ मारी, आटे के ऊपर, सारा आटा उसी के ऊपर गिर गया। तो हमारा जीवन भी वैसे ही है, हम इतनी चीजें बनाते हैं लाइफ में, स्वप्न देखते हैं और भगवान आते हैं हाथ पकड़ के कहते हो गया टाइम, शाम हो गई, चलो निकलो यहाँ से, हम कहते नहीं, इसलिए तो मृत्यु के समय रोता क्यों है व्यक्ति, छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए आसक्ति हमारे दुखों का एक कारण है। तो पहले से ही अनासक्त हो जाए इन चीजों में और कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाए, इसलिए भगवान कहते हैं पद्म पत्रमि वाम्बसः, जो कमल का फूल है कीचड़ या जल में रहकर भी उसका स्पर्श नहीं करता, वो हमेशा ऊपर निवास करता है। तो वैसे ही जीवन यापन करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति हम सबकी है, कृष्ण हमें याद दिलाते हैं और सबसे पहली चीज कृष्ण याद दिलाते भगवद गीता में सबसे पहली शिक्षा यही है कि भगवान हमारे असली पोजीशन के बारे में नॉलेज ज्ञान प्रदान करते हैं। तो भगवान गीता में तीन प्रकार का ज्ञान बताते हैं, एक है गुह्य ज्ञान, कौन सा ज्ञान, जैसे लोग होते हैं कहा तुम्हारे मन की गुह्य बात बताओ मुझे, हमें किसी को नहीं बताऊंगा या बताऊंगी नहीं, तो कृष्ण भी यहाँ तीन चीजें बताते हैं गीता में, गुह्य ज्ञान और एक गुह्यतर ज्ञान और एक गुह्यतम ज्ञान, थोड़ा अंदर और अंदर और डीप अंदर। तो गुह्य ज्ञान क्या है, आत्मा का ज्ञान, किस चीज का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान जो भगवान शुरुआत में ही प्रदान करते हैं। गुह्यतर ज्ञान, भगवान अपना जो विस्तार परमात्मा है उसके बारे में वर्णन करते हैं, और कृष्ण गुह्यतम ज्ञान, भगवान स्वयं अपने बारे में कृष्ण जो नॉलेज प्रदान करते, ज्ञान प्रदान करते भगवद गीता में, वो वास्तव में गुह्यतम ज्ञान है। तो ऐसे भगवान सर्वप्रथम हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं, और आत्मा का ज्ञान अर्जुन को देते हुए सर्वप्रथम वो कहते हैं कि वास्तव में हे अर्जुन, तुम जो चीज शोक करने योग्य नहीं है उस चीज के लिए शोक करते जा रहे हो, ये एक विद्वान को शोभा नहीं देता है। तो फिर भगवान उनको कहते हैं कि आप वास्तव में ये देह नहीं हो, आप ये शरीर नहीं हो, शरीर हमेशा परिवर्तित होता है, बदलता है, लेकिन एक ऐसी वस्तु है जो चेंज नहीं होती। गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, पेज नंबर 64 पेज नंबर में कृष्ण कहते हैं, देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान ये 11 से लेके 13वें श्लोक तक आत्मा का बेसिक नॉलेज देते हैं, लेकिन भगवान ने सोचा ये बेसिक समझ में नहीं आएगा और थोड़ा बताता हूँ, तो 14वें श्लोक से आगे बहुत सारे श्लोकों में आत्मा का भगवान विस्तार से वर्णन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हम जो आत्मा है वो चेंज नहीं होता है, जैसे हम छोटे से बच्चे थे वो फोटो हम देखते तो टोटली अलग है, यंग होते तो अलग है, बूढ़ी अवस्था में अलग है, लेकिन हम कभी नहीं कहते कि मैं यह नहीं हूं, हम क्या कहते हैं, मैं हूं। तो मतलब एक ऐसी वस्तु है जो बदलती नहीं है, शरीर बदलते रहता है, साइज आदि सब कुछ बदलता है। तो भगवान ये चीज से कहते हैं कि वास्तव में जो बदलता है वो क्या है, ये भौतिक शरीर है। और ये भौतिक शरीर जो प्रकृति का देन है, और प्रकृति किसके अध्यक्ष में कार्य करती है, भगवान के अध्यक्षता में। भगवान कंट्रोलर है, नियंता है, नियामक है। और ये प्रकृति के माध्यम से एक जीवात्मा को ये शरीर देते हैं। और ये शरीर किन चीजों का बना होता है, भगवान कहते हैं सातवें अध्याय के चौथे श्लोक में, पेज नंबर 243। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरस्तदः। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये आठ प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृति है। तो ये शरीर इन चीजों से बना हुआ है। तो दो प्रकार का शरीर इस आत्मा के ऊपर है, दो प्रकार का कवरिंग है। एक है स्थूल कवरिंग है, स्थूल शरीर, और दूसरा है सूक्ष्म शरीर। हाँ, जैसे इस शरीर के ऊपर भी हम दो चीजें पहनते हैं ना, इनर पहनते हैं, बनियान वगैरह पहनते हैं, और ऊपर भी शर्ट पहनते हैं। या तो कंप्यूटर में दो होते हैं ना, एक हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। हाँ, तो हार्डवेयर मीन्स क्या, एक स्थूल बॉडी, जो बॉडी हमें दिखाई दे रहा है। सॉफ्टवेयर अंदर काम करता है, इतना हमें दिखाई देता नहीं है। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर क्या है, वहां जो आत्मा के ऊपर जो सूक्ष्म शरीर है, और वो कौन सी चीजों से बना हुआ है, मन बुद्धि और अहंकार। और ये स्थूल शरीर पंच महाभूतों या पंच तत्व से बनाया है, पृथ्वी जल वायु और आकाश या अग्नि आदि से। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये जो आत्मा है उसके ऊपर ये दो प्रकार के कवरिंग है। और क्योंकि इस आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर है, तो स्थूल शरीर की क्या आवश्यकता है, स्थूल शरीर की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि सूक्ष्म शरीर से ये जो आत्मा है अपनी इच्छाओं का भोग नहीं कर सकता इस जगत में, क्योंकि ये जगत अधिकतर स्थूल चीजों से बना हुआ है। उसके लिए उसको क्या दिया जाता है, स्थूल शरीर दिया जाता है। आत्मा इच्छा करता है और इन इच्छाओं को प्रस्तुत करता है, ये मन और बुद्धि का कार्य होता है कि वो भेद करे कि उचित है वो डिजायर या नहीं। हाँ, और फिर उसको भोगने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए या उस सुख को अनुभव करने के लिए जो जीव है इस शरीर का सहारा लेता है, शरीर के माध्यम से एंजॉय करता है। और शरीर में भी क्या है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा वो इस भौतिक जगत में स्थूल जगत में आनंद प्राप्त करना चाहता है। तो जो सूक्ष्म देह में जो अहंकार होता है वो भी वास्तव में जीवात्मा इस मिथ्या अहंकार के कारण, कल भी हमने ये चर्चा की थी, मिथ्या अहंकार के कारण अपनी गलत पहचान इस शरीर के साथ करता है। हमारी वास्तविक पहचान क्या है, वेदांत सूत्र कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं क्या हूँ, ब्रह्म हूँ, मतलब मैं आत्मा हूँ, ये वास्तविक हमारी पहचान है। लेकिन हम शरीर के साथ अपनी पहचान करते हैं और आत्मा को न देखने के कारण हम जनरली उस चीज पर विश्वास नहीं करते हैं जो चीज हमें देखती नहीं है। लेकिन आप बताइए, चाइना दूर है या चंद्रमा दूर है, या कौन सा नजदीक है? जैसे अब पूर्णिमा का चांद आपको दिख रहा है, क्या लगेगा हमें, चंद्रमा क्या है, नजदीक है, चाइना हमें नजर नहीं आता। तो वैसे हमें आत्मा तो नजर नहीं आता, जिसके कारण हम उसको समझ नहीं पाते, लेकिन आत्मा की उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। शास्त्र कहते हैं तैल तीलेशु कास्तेशु वन्नी शिरे ग्रतम यथा। तो आत्मा की उपस्थिति को समझने के लिए शास्त्र कहते हैं जिस प्रकार से तिल में क्या होता है, तेल होता है, कास्टेशु वहनी, कास्ट मीन्स लकड़ में क्या है, फायर है, अग्नि है, क्षीरम घृतम मतलब दूध में क्या है, घी छुपा हुआ है, गंध पुष्पेशु, पुष्प का गंध हमें दिखाई देता है। शास्त्र कहते हैं कि पुष्प में भी गंध है। उसी प्रकार से भूतेषु तथा आत्मा अवस्थितो, उसी प्रकार से जीव के अंदर भी आत्मा की क्या है, उपस्थिति है। इस प्रकार से भगवान अलग अलग स्थानों में आत्मा की उपस्थिति का वर्णन करते हैं और हमें इस प्रकार से आश्वासन प्रदान करते हैं कि आप ये भौतिक देह नहीं है, आप भौतिक शरीर नहीं है, आप क्या हो, आध्यात्मिक हो। इसलिए जो जीव है सदैव इस शरीर से अपनी गलत पहचान करने के कारण शरीर के लिए अधिकतर कार्य करता है। आप सोचो, एक भी ऐसा कार्य इस संसार का नहीं है जो शरीर के लिए नहीं है। ये रोड्स भी बनाए तो किस लिए बनाए हैं, शरीर के लिए। कार भी है तो शरीर के लिए, घर भी, मेट्रोज हैं, बड़े बड़े शॉप्स हैं, विमान हैं, और जो सुरक्षा व्यवस्था है या जितने भी वस्तुएं हैं वो सब चीजें किस लिए है, शरीर के लिए। अल्टीमेटली भौतिक जगत की सारी जो अरेंजमेंट है एक प्रकार से हम कर रहे हैं या जिसको बहुत उन्नति हम समझ रहे हैं वो केवल शरीर के लिए है। लेकिन इतने उन्नत होने के बावजूद भी श्रील प्रभुपाद कहते हैं अमेरिका सबसे उन्नत देश है, उनके पास बेस्ट रोड्स हैं, बेस्ट फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी वहां के लोगों के अंदर मानसिक तनाव और अत्यधिक दुख है। क्यों? क्योंकि उनके पास ये आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा के बारे में वो नहीं जानते हैं। प्रभुपाद एक यूनिवर्सिटी में गए और वहां उन्होंने पूछा कि आपके यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जो ये शिक्षा देता है, एक मरा हुआ व्यक्ति और एक जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है? तो वहां के प्रोफेसर और जो स्टूडेंट्स हैं चुप हो गए। तो ये जो नॉलेज भगवान भगवद गीता के माध्यम से हमें प्रदान करते हैं और भगवान इस आत्मा के बारे में वर्णन करते हैं, तो हम अपने जीवन में अपने आप को बड़ा गर्वित महसूस करते हैं कि मैंने ये देखा, मैं ये देश में विजिट करके आया, मैं वहां गया। मैंने कहते हैं लोग जब कोई कहा घूम के आता है तो सारे जनता को बोलते रहता है, मैं ताजमहल देखने गया था, मैं वहां साउथ में गया था, नॉर्थ में गया था, यहाँ गया था, वहां गया था। सारे जगत को आपने देख लिया लेकिन अपने आप को आपने अभी तक नहीं देखा, ना समझा ना जाना। तो क्या है, जैसे कहते हैं दिए के नीचे अंधेरा, तो हमारी स्थिति वैसी है। हम जहां संसार में देखे घूमे लेकिन अपनी एक पहचान हम नहीं कर पाए तो हमारा जीवन वास्तव में पशुवत है या व्यर्थ है। इसी कारण से भगवान कहते हैं कि इस आत्मा का क्या स्वभाव है, भगवद गीता के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में पेज नंबर 273। भगवान आत्मा के स्वभाव के बारे में बताते हैं। अक्षरम श्री भगवान उवाच, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावाध्यात्म उच्यते भूत भावत भवकरो विसर्गा कर्म संगीतः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो उसका स्वभाव क्या है, अध्यात्म या आत्म, मीन्स वो नित्य है, सनातन है और वो आनंदमय है। इसलिए वेदांत सूत्र आत्मा के और स्वभाव का वर्णन करते हुए कहता है आनंदोमयोभ्यासात। सूत्र मीन्स कि बहुत सारी शिक्षा को एक छोटे से शब्द में बोलते हैं वेदांत सूत्र। तो कहते हैं कि जीव का स्वभाव है आनंदमयोभ्यासात, कि जीव मूल रूप से वो आनंद में है। इसलिए आना जीव का जो स्ट्रक्चर है आत्मा का, वो आत्मा सच्चिद और आनंद से बना हुआ है। सत मीन्स क्या है, शाश्वत। चित मीन्स पूर्ण ज्ञानमय। आनंद का मतलब है पूर्ण आनंदमय। और इसी कारण से हम मरना नहीं चाहते क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है शाश्वत सनातन। इसलिए हमें इस ऐसे शरीर में डाला है जो शरीर मरने वाला है, इसलिए हमें कभी भी मरने की इच्छा नहीं होती है या हम मरना नहीं चाहते, हम सदैव जीवित रहना चाहते। इसलिए कृष्ण गीता के 2रे अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं, पेज नंबर 69। तो सबके पास गीता होनी चाहिए और आप देख सकते हैं श्लोक। तो भगवान कहते हैं कि जो शरीर आपके पास है वो तो नाशशील है। पेज नंबर 69। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिना अनाशिनो प्रमेयश तस्माद् युद्धस्व भारत। कि हे अर्जुन अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। तो पहले आत्मा के बारे में भगवान कहते हैं अविनाशी है, अप्रमेय है, शाश्वत है, उसका शरीर शाश्वत नहीं है। हे भरत वंशी युद्ध करो। तो इस प्रकार से जो शरीर हमारे पास है वो नाशवान है और ये बिल्कुल ही आत्मा से विपरीत है। आत्मा सत चित आनंद और शरीर कैसे है, असत अचित और निरानंद। क्या है बोलिए, असत अचित निरानंद। असत मतलब शरीर शाश्वत नहीं है, ज्ञानवान नहीं है और निरानंद, निरानंद मीन्स आनंद से रहित है। इसलिए शास्त्र कहते हैं शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर किस चीज का मंदिर है, व्याधियों का, बीमारियों का, कष्टों का ये मंदिर है। इसी कारण से इसमें इतने 9 छिद्र हैं। गीता में कहते हैं इस बॉडी में कितने होल हैं, 9 द्वारे पूरे देही। इस शरीर में 9 गेट्स हैं और 9 गेट्स केवल गंध ही छोड़ते हैं। उन गेट्स को व्यक्ति को सफाई करना होता है सुबह उठते ही। लेकिन हम अपने आप को इतना गर्वित महसूस करते हैं ये भौतिक शरीर धारण करके, लेकिन आत्मा जो हम आत्मा है जिसकी सुंदरता की तुलना नहीं की जा सकती। आत्मा इस देह को त्याग देता है तो ये सुंदर शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितने भी वस्त्र अलंकार से आभूषित क्यों ना हो और कोई कितना भी उससे प्रेम क्यों ना कर रहा हो, कोई मरे हुए शरीर को अपने साथ रखना नहीं चाहता। चाहे वो पत्नी हमसे कितनी प्रेम करती हो या पति क्यों ना हो, लेकिन जब मर जाता है तो हम एक दिन के लिए भी उनके साथ रहना नहीं चाहते। उनके डेड बॉडी को भी रखना पड़ता है तो हम कहते दूसरे रूम में रखो या मॉर्चरी में जाके रखो ना, हॉस्पिटल्स में, लेकिन घर में अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। तो मतलब क्या चीज है जो चली गई, आत्मा है। जिससे हम वास्तव में उस आत्मा से प्रेम करते हैं, जो चले जाने के बाद वो हमारे लिए प्रिय नहीं रहता, वो वस्तु वो व्यक्ति आदि। तो इस प्रकार से भगवान कहते ये शरीर आत्मा के कारण ही सुंदर है। आत्मा नहीं है तो सारी सुंदरता नष्ट हो सकती है या नष्ट हो जाती है। और भगवान गीता में यह भी कहते कि अर्जुन ऐसे नहीं है कि ये अशाश्वत है, दोनों भी शाश्वत है। भगवान कहते मैं भी और तुम भी। भगवद गीता के 2 अध्याय का 12 श्लोक ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोकों में से भी है फिलोसॉफिकल। भगवान कहते हैं पेज नंबर 62, नत्पिवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। मतलब भगवान कहते मैं शाश्वत हूं और तुम भी शाश्वत हो, आत्मा के रूप में, शारीरिक रूप में नहीं। ऐसे नहीं था कि जीव पहले नहीं था या भगवान भी नहीं थे पहले। भगवान कहते हम पूर्व भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे, आगे एक नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से भगवान आत्मा की शाश्वतता के बारे में ये वर्णन करते हैं और भगवान सदैव आत्मा के साथ निवास करते हैं। तो लेकिन भगवान कहते अंतर भी है, तो अंतर किस चीज का है, गीता के 4 अध्याय के 4 श्लोक में भगवान ये वर्णन करते पेज नंबर 147 में। तो जब भगवान ने कहा कि अर्जुन ये गीता का उपदेश में तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरा भक्त और सखा हो, तो फिर अर्जुन पूछता और भगवान ने कहा मैंने ये ज्ञान ऐसे नहीं कि तुम्हें दिया था, पहले सूर्यदेव विवस्वान को भी मैंने ये ज्ञान दिया था। तो अर्जुन ने कहा रुको रुको, मेरे पास प्रश्न है आपको पूछने के लिए। तो अर्जुन प्रश्न पूछता है, अर्जुन वाच 4 नंबर श्लोक 147, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। भगवान कहते हैं अगले श्लोक में 5 नंबर पेज नंबर 148 नेक्स्ट पेज, बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वानि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो भगवान उन सबका स्मरण रख पाते क्योंकि उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं है। भगवान को हमारे जैसे शरीर परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, उनका देह चिन्मय या दिव्य शाश्वत है। लेकिन हमारा ये जो शरीर है स्थूल शरीर हमें बदलना पड़ता है, जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। भगवान का शरीर तो शाश्वत है सच्चिदानंद, लेकिन हमने टेम्पररी कवरिंग स्वीकार किया है जो अचित असत और निरानंद है। तो फिर भगवान कहते हैं अर्जुन ये जो शरीर है ये वास्तव में आपकी पहचान नहीं है। ये शरीर जो तुम्हें प्राप्त हुआ है ये एक प्रकार का ड्रेस है जो आत्मा के ऊपर क्या है, कवरिंग है। पेज नंबर 73 में आप देख सकते हैं श्लोक नंबर दूसरे अध्याय का 22वां 73 पेज नंबर, जहाँ कृष्ण कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो भगवान कहते हैं ये तो वस्त्र के भांति ये शरीर है। वस्त्र जब फटने लगता है खराब होने लगता है हम उसे फेंक देते हैं और दौड़ते हैं शॉपिंग करने के लिए। आनंद आता है कि नहीं वस्त्र नए नए पहनने के लिए। लेकिन ये वस्त्र यहाँ तो कम वैरायटी है, लेकिन भगवान कहते हैं कितनी वैरायटी है इन वस्त्रों की, कल ही हमने चर्चा की थी, कितने 84 लाख ड्रेसेस है आपके पास। अब सोचो कौन सा चूज करना है, कुत्ते का है, बिल्ली का है, कॉकरोच का है, चूहे का है, गधे का है, अनलिमिटेड है। इतने ड्रेस है कि हम जानते भी नहीं उन्हें। तो भगवान कहते हैं कि ये कवरिंग उन वस्त्रों के भांति है आत्मा के लिए। तो आत्मा के पास अपना स्वरूप है। हाँ क्यों स्वरूप है, क्योंकि भगवान का क्या है, स्वरूप है, भगवान का रूप है। इसलिए किसी कारण से जीव का भी एक स्वरूप है। जैसे होलसेल से रिटेल आता है कि नहीं, हाँ तो वैसे ही है भगवान। हाँ जैसे सोल कहते ना, वो होल सोल है, पूर्ण सोल है, और वैसे हमारा क्या है, हम छोटे से सोल है। तो भगवान का स्वरूप है, वैसे ही हमारा भी स्वरूप है। जैसे दर्जी कपड़े सिलाता है, प्रभुपाद कहते हैं या हाथ है इसलिए शर्ट में क्या बनाता है, दर्जी हाथ बनाता है। तो उसी प्रकार से आत्मा का स्वरूप है, जिसके कारण हाँ इन शरीरों का भी अलग अलग स्वरूप है। लेकिन भगवान और जो जीवात्मा है उनमें एक साम्य है। हाँ गुण, किस चीज का साम्य है, गुण। लेकिन उनमें जो क्वांटिटी है उनका साम्य नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि फायर में से एक चिंगारी निकल के जाए वो भी फायर ही है, लेकिन मात्रा में क्या है, कम है। उसी प्रकार से हम हाँ जो जीव है। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को ये आत्मा का विज्ञान समझाते हैं। तो लेकिन इस आत्मा को हम देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि वो इतना छोटे से साइज का है। हाँ पेज नंबर 68 निकाल सकते हैं आप, जहाँ आत्मा की साइज बोली गई है। हाँ 68 में तात्पर्य में दो श्लोकाज है, उसमें से एक श्लोक है श्वेता श्वेतर उपनिषद में आत्मा के साइज का वर्णन किया है। तो वहां कहा गया है बालाग्र शत भागश शतधा कल्पितश्च, पेज नंबर 68, भागो जीवस विज्ञेय सच अनंताय कल्पते। यदि बाल के आग्रह भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। हाँ श्वेता श्वेतर उपनिषद का श्लोक। बाल के आग्रह भाग को लो, उसको 10,000 भाग करो, उसमें से एक लो, उसके फिर से भाग करो, तो वो क्या है, आत्मा का साइज है, भगवान कहते हैं। तो इस कारण से ये जो आत्मा है जो शाश्वत है, एक प्रकार से चिन्मय वस्तु है, जिसको ना मृत्यु है और ना जन्म है। हम भी क्यों नहीं मरना चाहते, क्यों नहीं जन्म लेना चाहते, क्योंकि आत्मा के लिए दोनों चीजें नहीं है। लेकिन ऐसे बैग में हमें पैक कर दिया है जिसमें ये सारी चीजें लगी हुई है। इसलिए भगवान ये चीज को बताने के लिए इतने सारे श्लोक बोलते हैं कि आत्मा को, आत्मा मरता नहीं है, जन्म नहीं लेता, इसको काटा नहीं जा सकता। हाँ, गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक पेज नंबर 70, वो सारे श्लोक हम पढ़ेंगे अभी। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयं पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पेज नंबर 70 में जो श्लोक है 20 नंबर। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा, वो अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता। तो भगवान आगे पेज नंबर 75 में भी इस चीज को बताते हैं। हाँ, श्लोक नंबर 25 है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुम अर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं इसको काटा भी नहीं जा सकता। तो भगवान पेज नंबर 74 में कहते हैं, श्लोक नंबर 23 उसी के साथ है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, बोलिए। नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। ये आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आत्मा के इन सारे लक्षणों का वर्णन कृष्ण में गीता में कर रहे हैं। और पेज नंबर 75 में भी एक श्लोक है 24 नंबर, जहाँ कहते हैं अच्छोदयम अदायोयम अक्लेद्य शोष एव च नित्य सर्वगता स्थानुर अचलयम सनातन। तो इसमें कई सारी महत्वपूर्ण शिक्षा है आत्मा के बारे में। तो एक है नित्य सर्वगता। सर्वगता मतलब ये आत्मा सर्वव्यापी है, सब स्थानों में जीव क्या है, अवेलेबल है, इवन फायर में भी है। शास्त्र कहते हैं, साइंटिस्ट ने अभी अभी ढूंढ निकाला कि फायर में भी फायर बैक्टीरियाज होते हैं। तो यहाँ जो जीव है वो सब जगह है, शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं ये आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये जो देही है, तो आत्मा को भगवान ने एक शब्द भी यूज किया है, ओनर। हाँ, श्लोक नंबर 30 है दूसरे अध्याय का पेज नंबर 80, जिससे भगवान इस आत्मा को कहते हैं कि आत्मा ये ओनर है उस बॉडी का। कहते देही, देही नित्यम अब अवध्योयम, कि देही जो आत्मा है उसका वध नहीं किया जा सकता। देह सर्वस्व भारत, पेज नंबर 80 श्लोक नंबर 30। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे भरत वंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान इस आत्मा का अर्जुन को अधिक से अधिक ज्ञान दे रहे हैं, और अर्जुन को कह रहे कि अर्जुन ये जो आत्मा मेरा शाश्वत अंश है। पेज नंबर 471 में हम भगवान इसकी चर्चा करते हैं, 471 में। हाँ, 15वें अध्याय का श्लोक नंबर 7। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जो मेरे शाश्वत अंश हैं, बद्ध जीवन के कारण वह 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये मेरा पहले से अंश है, अभी भी है और आगे चलकर भी अंश है। और तो भगवान ये भी स्थापित करते कि ये सारे जीव उनका वास्तविक पिता कौन है, मैं हूँ। तो भगवान गीता के 14वें अध्याय के 4वें श्लोक पेज नंबर 449 में वो कहते पेज नंबर श्लोक 4वें अध्याय का 4वां श्लोक। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यहाँ तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदापितः। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो कृष्ण कहते वो मेरा अंश है और दूसरे स्थान में ये भी स्थापित करते हैं कि मैं वास्तव में उनका ओरिजिनल फादर हूँ। इस प्रकार से जो जीव और भगवान इनमें अंतर है। तो अंतर क्या है? भगवान कहते हैं कि ये जो जीव है मेरा शाश्वत अंश है और इस जीव से मैं अलग हूँ। तो थोड़े से और श्लोक हम पढ़ते, 15वें अध्याय का 16 पेज नंबर 479। तो भगवान कहते हैं जीव में और मुझ में क्या अंतर है? पेज नंबर 479 15वें अध्याय का 16वां श्लोक। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर चाक्षर एव चाक्षर सर्वानि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्चते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। मतलब जो बद्ध जगत में है वो च्युत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो जीव है उनको अच्युत कहा जाता है। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत और अक्षर कहलाता है। आप पेज आगे वाला देख सकते हैं जहाँ कृष्ण कहते 17वें श्लोक में इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अनिवासी अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। तो भगवान कहते हैं कि इन दोनों के अतिरिक्त और एक है और वो मैं हूँ। तो उसी को और अच्छी तरह से समझाने के लिए कृष्ण 18वें श्लोक में भी बोलते हैं, पेज नंबर उसी के आगे 481 में कहते, चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं ये जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान कहते मैं जीवन से अब अलग हूँ। तो भगवान इस चीज की स्थापना करते हैं आत्मज्ञान की और हमें समझाते हैं कि आत्मा वास्तव में मेरा नित्य अंश है और शरीर कैसे विनाशशील है और मैं जीवात्मा से भी क्या हूँ? अलग हूँ। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब यही है, आत्मा का और परम भगवान का क्या करना? साक्षात्कार करना। कोई भगवान, आप कहेंगे कि सेमिनार के बाद तो आप हमें भगवान दिखा सकते हैं, हम आपको ना आत्मा दिखा सकते ना भगवान दिखा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस बता सकते हैं। जैसे अभी अच्छा फिस्ट यहाँ आया है, लेकिन प्रसाद आया है तो टेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? खुद ही खाना पड़ेगा कि नहीं? तो प्रोसेस को खुद ही फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज जो ये कहते कि आपको भगवान दिखा देंगे, आत्मा दिखा देंगे, आप फी पे कीजिए, तो ये सरासर क्या है? धोखा है, चीटिंग है। आपको टेस्ट किसी पदार्थ का लेना है तो आपको खुद खाना होगा, तभी आप उसकी अनुभूति कर सकते हो। तो भगवान इस शिक्षा का वर्णन करते हैं और भगवान हमें धीरे 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 अपना जो सर्वोच्च ज्ञान है उसकी ओर क्या करते हैं? अग्रसर करते हैं। तो आज ये कौन सा ज्ञान था? गुह्य ज्ञान। कौन सा? गुह्य ज्ञान। गुह्यतम और गुह्यतर और गुह्यतम। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन के गुरु का पद स्वीकार करते हैं और उनको सबसे पहले गलती ढूंढते हैं उनमें, दिखने में बोलने में पंडित लगते। जैसे प्रभुपाद गीता के एक तात्पर्य में लिखते हैं, मूर्ख व्यक्ति का तभी पता चलता है जब वो अपना मुंह खोलता है। इसलिए लोग मुंह बंद रखते कि बोलते नहीं ज्यादा, क्योंकि दूसरों को पता चल जाएगा मैं क्या हूँ? मूर्ख हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा कुछ ऐसे मौनी बाबा होते हैं, वो लोगों को दिखाने के लिए अपना मुंह बंद करके रखते हैं। प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ कुरुक्षेत्र गए तो एक शिष्य ने कहा, देखिए हम अभी अभी देख के आए कि कई 15 साल 20 साल से एक मौनी बाबा ने यहाँ एक लॉक लगा के रखा है और सारे लोग उनका चरण छूने जा रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, भगवान ने मुंह दिया है, जीवा दी है, लॉक लगाने के लिए नहीं, किस चीज के लिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो इस प्रकार से अर्जुन में गलती ढूंढते है सर्वप्रथम, और उनको सबसे पहले आध्यात्मिक जीवन की ABCD है ये जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हो, और आत्मा की भी अलग अलग विशेषताओं को जानना, आत्मा के अलग अलग जो लक्षण आदि है। तो आत्मा की अनुभूति होती है चेतना से। इस बॉडी में क्या है? चेतना होती है तो हम आत्मा की उपस्थिति के अनुभूति करते हैं। तो ये शिक्षा भगवान हमें इस दूसरे अध्याय में प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे।